ये आकाशवाणी है। सामयिकी में प्रस्तुत है वाराणसी में विकास परियोजनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक एनके सिंह और पत्रकार विजय क्रांति।
आज एक बड़ा खास दिन रहा वाराणसी के लिए भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी और उससे जुड़े हुए जो इलाके हैं बिहार के उनके लिए भी। प्रधानमंत्री आज वाराणसी में थे जहां उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, कईयों की नींव रखी और कुल मिला के ये माना जा रहा है कि लगभग 2900 करोड़ रुपए के ये अलग अलग परियोजनाएं हैं जो उस इलाके में अपना कहीं असर दिखाने जा रही हैं। एनके सिंह जी, ये जो प्रधानमंत्री की आज की वाराणसी यात्रा है और उसमें जो अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, खासतौर से जो डीजल लोकोमोटिव को बिजली के लोकोमोटिव में बदलना, ये इस तरह की जो परिवर्तन हम देख रहे हैं जो आज सामने आ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे?
विजय जी, मुझे तो लगता है कि मार्च ऑफ टेक्नोलॉजी और मानव कल्याण के लिए उसके इस्तेमाल का आज ये एक बहुत बड़ा दिन है। आप देखें, आने वाले दिनों में एनवायरमेंट फैक्टर्स हैं, पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से हमने पहले तो कोयला छोड़ा। आपको याद होगा एक जमाने में हम लोग चलते थे जब कोयले में आंख में लगता था वो कोयला,
रेलगाड़ी में जब
बैठते आंखें लाल हो जाती थी, कई दिक्कतें,
पूरा पूरी तरह झुलस जाता था।
तो उसके बाद डिजिटलाइजेशन हुआ, हम लोग जब रिपोर्टर थे तो लिखते थे कि 80% डिजिटलाइजेशन हो गया और बहुत बड़ी उपलब्धि मानते थे। मार्च ऑफ टेक्नोलॉजी में आज हम वहां पहुंच गए हैं कि अब धुआं नहीं हुआ करेगा। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने डीजल के ही, और डिरेका आप जानते हैं बनारस में बहुत बड़ा कारखाना है जो कि डीजल लोकोमोटिव बनाता है, प्रीमियर कारखाना है, वहां से आज हम उन्हीं इंजिन्स को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक, और वो भी 69 दिनों के अंदर, 69 डेज के एफर्ट में हमने डीजल से, डीजल के चैम्बर को या डीजल मोटर को आपने इलेक्ट्रिक में
की जगह, हाँ, बिजली की मोटर,
आप सोचिए कि किस तरह का, क्योंकि डीजल में जो कंबस्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है। उसमें जेट से आप एयर और तेल फ्यूल का वो बूंदे होती है, बहुत ड्रॉपलेट्स होते हैं जिसका एक वेपर
बनकर वो जलता है,
डालते हैं और उसमें जो आपके प्लग से स्पार्क होता है उससे कंबस्शन होता है।
ये तो रहा डीजल को बिजली वाले इंजनों में बदलना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम है। भारत में ये नहीं कि सिर्फ एक इंजन को परिवर्तित किया है, ये तो
सारे इंजनों को बदलना,
क्योंकि भारत में जो ज्यादातर रेलवे है वो डीजल इंजनों पर चल रही है और अब जो उसका विद्युतीकरण है वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत पड़ेगी। और मुझे लगता है कि ये जो मेक इन इंडिया जिसको हम कह रहे हैं कि भारत में ही अगर हम ये बदलाव करने में हमारे रेलवे के टेक्नीशियन और रेलवे के इंजीनियर कामयाब रहे हैं तो मुझे लगता है उनको एक बहुत बड़ी शाबाशी दी जाएगी।
याद कीजिए, ये चीजें हम लोग जापान से मंगवाया करते थे कि हमने जापान से एक नई टेक्नोलॉजी मंगवाई है, नया वो मोटर मंगवाया है जो डीजल को रिप्लेस करेगा, हमने सारे डीजल इंजन भेज दिए जापान से वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट वगैरह वगैरह। आज हम ये खुद कर रहे हैं और इसका जो फायदा हो रहा है, जो तमाम मुल्क हैं करीब, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं खास करके करीब 80-85 वो हैं जो कि अभी डीजल पे भी बहुत ही वैसे स्टेज पे है और डीजल उनके लिए छोड़ना मुश्किल है, उनको जरूरत जब होगी और हम सस्ते कीमतों पे डीजल,
वहां पर जो हम जो मेक इन इंडिया है वो अपना असर दिखाएगा। हालांकि पहले भी चर्चा हो चुकी है पर आज मौका है उसको फिर से चर्चा करने का। ये जो ट्रेन 18 बनी है, रेलवे ट्रेन जो एक तरह की भारत का एक संस्करण है बुलेट ट्रेन का, 180 किलोमीटर तक की, वो भी भारतीय इंजीनियरों ने, टेक्नीशियंस ने अपने बूते पर रेलवे वालों ने बनाई है। तो मुझे लगता है कि एक शाबाशी जो है बिरादरी के लिए बनती है।
जब मैंने सुना तो मैंने कहा ये पॉसिबल इसलिए नहीं है, एक सेम ट्रैक पे जो भारत के ट्रैक्स हैं वो पुराने हैं और ये माना जाता था कि जो प्रेजेंट हमारा इस समय लोड है जिसको रोलिंग स्टॉक कहते हैं, रोलिंग स्टॉक इन ट्रैक पे ऑलरेडी दिक्कत हो रही है क्योंकि ये ट्रैक बहुत पुराने हैं। जब मैंने सुना तो मुझे कहा 180 की इम्पॉसिबल है स्पीड आम तौर पे अचीव करना, मैक्सिमम स्पीड। फिर किसी हमने इंजीनियर से बात किया, किसी रेलवे के अथॉरिटी से, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इसमें किया ये गया है कि इस पूरे कोच को इतना लाइट कर दिया गया है, हर कोच में एक इंजन होगा और उसमें जो फाइबर्स यूज किए गए हैं उसकी वजह से उसका वेट इतना कम हो गया है कि स्पीड वो गेन कर लेगा, रिक्वायर्ड वेट भी रहेगा ताकि वो ऑफ ट्रैक ना हो, और ट्रैक पे हमारा जो प्रेशर है जो पहले होता था जिसमें कि हम लोकोमोटिव आगे लगाते थे और तब वो चलता था, बड़ा भारी होता था, इसमें वो सारी चीजें कम कर दी गई हैं, लिहाजा उसी ट्रैक पे हम 180 की स्पीड आसानी से अचीव करते हैं।
तो ये तो रही एक उपलब्धि। अब टेक्नोलॉजी की तरफ से थोड़ा सा हटकर हम आए जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। आज गुरु रविदास जी की जयंती है और आज प्रधानमंत्री जी ने रविदास जन्मस्थली विकास परियोजना का भी उद्घाटन किया है, तो ये एक अपने आप में मुझे लगता है एक बड़ी रोचक डेवलपमेंट है, क्योंकि गुरु रविदास न सिर्फ भक्ति आंदोलन के एक बहुत बड़े पुरोधा थे बल्कि जो भारत में आज जिसकी जरूरत है, जातिवाद को कम करना। एक ऐसे मौके पर जबकि राजनेताओं का एक वर्ग है जिसको जाति का जो विभाजन है उसको बढ़ाने में फायदा दिखता है, तो समाज को ठीक रास्ते पर लाने और जाति जैसा जो एक विषय है उसको एक स्वस्थ रूप देने में गुरु रविदास ने जो भूमिका निभाई थी, मुझे लगता है कि आज का जो डेवलपमेंट है ये उस मायने में काफी महत्वपूर्ण है।
ये मेरा प्रिय विषय है कि आइकॉन बिल्डिंग सोसाइटी में कितनी जरूरी है, प्रतिमान हम क्यों बनाते हैं। प्रतिमान के काम तब आमतौर पे आप देखेंगे तो प्रतिमान की कोई जरूरत नहीं है, आपने फोटो लगाया, मूर्ति लगाई, पूजन किया साल में एक दिन। आइकॉन्स इसलिए बनाए जाते हैं कि कभी अगर समाज फिसला तो ये खूंटे की तरह होता है जिनमें उस फिसलाव में आप इस खूंटे
किसी भी तूफान में अपने आप को रोक कर रख सकते
जी, किसी भी क्राइसिस में समाज फिसलने लगता है, मूल्यों का पतन होने लगता है, तब ये पिक्स
ये महापुरुष उस वक्त हमारे।
इसलिए जो सबसे बड़ी जरूरत है भारत में वो आइकन बिल्डिंग की है, प्रतिमान बनाने की। ये बहुत अच्छा है कि हमने संत रविदास को, जिनको बचपन में हमने पढ़ा है, उनको चुना है जो कि किसी भी मानवीय संकीर्णता से बेहद ऊपर रहे। और सच बात आपने कही कि ये आध्यात्मवाद का कोई चरम जो होता है वो जाके संत रविदास के ऊपर मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये ब्लेंड है, एक तरफ टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ आत्मसंतुष्टि के लिए आपको ऐसे आइकॉन्स डेवलप करना जिनसे आपको रियल सेटिस्फेक्शन मिले, वो पार्टीजन एटीट्यूड ना हो। तो ऐसे आइकॉन्स को आप तलाशना और इन्हें डेवलप करना, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है जो कि किया गया है।
हालांकि प्रधानमंत्री की जो आज की यात्रा थी बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें कितने ही प्रोजेक्ट जो है, कुछ का उन्होंने उद्घाटन किया, कुछ का शिलान्यास किया, तो उसमें से एक है वो भी महापुरुष जो मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था, उनके नाम पर वहां बीएचयू में ही आज कैंसर इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है। इसका कितना महत्व है उस इलाके के लिए।
विजय जी, मैंने बनारस में जर्नलिज्म किया है, मैं काफी दिनों रहा हूं। बीएचयू जब आप वर्ड यूज करते हैं तो महामना के बिना इसको सोच ही नहीं सकते। लिहाजा अगर बीएचयू में आप कोई काम कर रहे हैं तो महामना का ही काम है। वो भी एक संत हुआ करते थे और महामना का जो कंट्रीब्यूशन है, खास करके बीएचयू में आज उद्घाटन जिसका मोदी जी ने किया है, वो कैंसर डिपार्टमेंट पहले से भी था। मैं बिहार का रहने वाला हूं, छपरा और सीवान का। मेरे गांव में अगर कोई क्रिटिकली बीमार पड़ता है रात के 2 बजे, तब जो पहला उसके जहन में, उसके परिवार के जहन में बात आती है वो ये होती है कि टैक्सी मंगाओ, गाड़ी मंगाओ, जल्दी से बीएचयू चलो। और ये सिर्फ उसी जिले का नहीं है, आसपास के तमाम जिले।
तो आपको लगता है कि ये जो कैंसर इंस्टीट्यूट वहां
और ये इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हुआ है डिपार्टमेंट से,
ये उस इलाके के लिए कितना महत्वपूर्ण?
बेहद। कम से कम मैं तो ये मानता हूं कि कई दर्जन जिले बिहार के और ईस्टर्न यूपी के, बल्कि यूं कहिए कि कुछ पार्ट ऑफ सेंट्रल यूपी भी उसमें आ जाएगा, वो इस समय कैंसर पर्पजेस के लिए, अगर कैंसर के एलिमेंट है उसके इलाज के लिए आना चाहते हैं तो वो बीएचयू आएंगे। और ये बहुत बड़ा काम था, बहुत रिक्वायर्ड था, इसकी जरूरत इतनी थी, सही समय पर हुआ है।
और स्वास्थ्य जुड़े हुए कुछ एक दो और ऐसे भी परियोजनाएं हैं जो आज प्रधानमंत्री ने इस इलाके को दी है कि ईएसआईसी का जो हॉस्पिटल है उसमें 150 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी हिस्सा ऐड किया गया है, कैजुअल्टी ब्लॉक ऐड किया गया है। उसके अलावा जो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल वहां का है उसकी अपग्रेडिंग हुई है, और इसके साथ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर शिवपुर में वो भी एक नया बनाने की बात कही गई है।
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तो आयुष का पार्ट है कि पहले आपको प्राइमरी नेटवर्क, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाने हैं, उसके बाद कम्युनिटी है, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन है। तीनों आज उन्होंने लिए हैं, प्राइमरी शायद नहीं लिया है, लेकिन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिट होगी, और ये लिए आयुष्मान भारत का एक प्रोजेक्ट है। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें एक नई दिशा देंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद एनके सिंह जी, आपका के इस चर्चा में आप शामिल हुए।
नमस्कार।
समयकी में अभी आप सुन रहे थे वाराणसी में विकास परियोजनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक एनके सिंह और पत्रकार विजय क्रांति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।